नमस्कार भारत, गुरुवार 24 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। मोसुल में इराकी सेना ने मजबूती से बढ़ाए कदम, इस्लामिक स्टेट के लड़ाके दो तरफ से घिरे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी जारी, लेकिन हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने भारत आएंगे सरताज अजीज।
अब पाकिस्तान एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए वो उसकी मर्जी है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो आएंगे नहीं, लेकिन अब ये आने का उन्होंने माहौल इसीलिए बनाया है कि वो अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते।
खास मुलाकात हरियाणा के गांव में घूंघट उठाकर दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देने वाली अंजू यादव से, साथ ही कहानी छत्तीसगढ़ की गीता की जो पहले माओवादी थी अब राज्य की पुलिस में है।
एक मत के ईश्वर मुलिल के दिन नाले घटना न दिन नाले परसोई के दिन नाले।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। इराक के अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने मोसुल के पश्चिम में एक अहम सड़क को नियंत्रण में लेकर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को घेरने का दावा किया है। हश्द अल शाबी समूह ने ऐलान किया है कि कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर तल अफर और सिंजर शहरों के बीच की सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। इराकी सेना मोसुल के पूर्वी इलाके की तरफ से आगे बढ़ रही है, जहां से बताया जा रहा है कि 5-6 हजार चरमपंथियों से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। ट्रंप प्रशासन में कैबिनेट रैंक हासिल करने वाली निकी हेली भारतीय मूल की पहली महिला है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान वो कई बार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के उप प्रवक्ता फरहान हक ने इस फैसले का स्वागत किया।
We are aware of the naming of Nikki Haley.
निकी हेली को नामित करने के बारे में हम सब जानते हैं। सभी अधिकारी कई मुद्दों पर उनके विचारों से वाकिफ हैं। साउथ कैरोलिना में चार्ल्सटन चर्च पर नस्लीय हमले के बाद उनकी सराहनीय टिप्पणियों के बारे में भी हम सब जानते हैं। ये थे फरहान हक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद जो फॉक्स की हत्या के आरोप में थॉमस मायर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यूरोपीय संघ से बाहर होने के मुद्दे पर जनमत संग्रह से एक हफ्ते पहले जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में गोली मारकर और चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, वो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में प्रचार कर रही थी। अभियोजकों ने कहा है कि मायर नफरत से प्रेरित थे और उनका अपराध आतंकवाद से कम कुछ भी नहीं है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कैद एसएफसी ने पुष्टि की है कि लीबिया और ट्यूनिशिया की सीमा पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अमरीकी ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। कैद एसएफसी ने कहा कि सीमा पार से चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हमले के खतरे को देखते हुए अमरीकी ड्रोन को इजाजत दी गई है। इस साल की शुरुआत में 50 से ज्यादा लोग घुसपैठ की घटनाओं में ट्यूनिशिया में मारे गए हैं। राष्ट्रपति पर अमरीकी सैनिक अभियान को लेकर स्थिति साफ करने का दबाव था। ट्यूनिशिया की संसद के लिए देश में अमरीकी सेना की मौजूदगी संवेदनशील मुद्दा है। चरमपंथी संगठन अलकायदा ने अपने एक वरिष्ठ नेता फारूक अल कहतनी की मौत की पुष्टि कर दी है। पिछले महीने उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों में उनकी मौत हो गई थी। वॉशिंगटन ने 5 नवंबर को इस हमले को सफल बताते हुए कहतनी की मौत की पुष्टि की थी। अलकायदा का कहना है कि इस हमले में कहतनी की पत्नी और बच्चों समेत कई चरमपंथियों की मौत हो गई है। अमरीका ने अल कहतनी को मोस्ट वॉन्टेड चरमपंथियों की सूची में रखा हुआ था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर गुरुवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के अभियान में इराकी सेना दिन बर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इराकी सुरक्षा बलों को मोसुल के पश्चिम में एक मुख्य सड़क पर नियंत्रण हासिल कर ताजा सफलता मिली है। घनी आबादी वाले मोसुल शहर की लड़ाई 5 हफ्ते पहले शुरू हुई थी। इराकी सेना शहर के पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी शहर में लाखों आम लोग रह रहे हैं। प्रवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कहना है कि मोसुल की इस लड़ाई के चलते शहर से करीब 15 लाख लोगों को निकालने में समस्या आ सकती है। लेकिन मोसुल के भीतर के हालात क्या हैं, ये जानने की कोशिश की बीबीसी के संवाददाता आयमान ओघाना ने। उनका भेजा ब्यौरा सुनिए हरता कांडपाल से।
इराक इराक के अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने मोसुल के पश्चिम में एक अहम सड़क को नियंत्रण में लेकर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को घेरने का दावा किया है और एक हवाई हमले में मोसुल के एक पुल को नुकसान भी पहुंचा है। इस अभियान में इराकी सुरक्षा बलों के करीब 50,000 सैनिक, कुर्द लड़ाके और सुन्नी अरब कबायली लड़ाकों के अलावा शिया लड़ाके भी शामिल हो रहे हैं। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से मोसुल शहर को मुक्त कराने के लिए इराकी सेना इस शहर में घुस चुकी है। ये तो कहानी की शुरुआत है। अब इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर को वापस लेने के अभियान का दूसरा अध्याय शुरू होता है। बड़ी जनसंख्या वाले इस शहर को वापस पाने का अभियान आसान नहीं है, क्योंकि इसे चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से वापस लेने के लिए लड़ाई शहर की गली दर गली, घर से घर, इंच दर इंच हो रही है। ये आवाज मोसुल के एक इलाके में उस गली की है जहां टैंकों से फायरिंग की गई है। इसके बाद मोर्टार और बंदूकें लेकर एक घर में 3-4 इराकी सैनिक मुस्तैदी से घुस जाते हैं। घर में एक परिवार के कुछ लोग हैं, एक बुजुर्ग महिला के अलावा कमरे में गोद में बच्ची के साथ एक आदमी खड़ा है। इराकी सैनिक उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं। इस परिवार को कुछ समय के लिए दूसरी जगह पर जाने के लिए कहा जाता है। इराकी सेना ने करीब 5 हफ्ते पहले मोसुल को आईएस के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए अभियान शुरू किया था। इस अभियान में शामिल एक इराकी सैनिक से बीबीसी संवाददाता आयमान ओघाना ने पूछा कि क्या मोसुल को छुड़ाने का अभियान काफी मुश्किल है। वो कहता है यहाँ बहुत से लोग हैं, इनमें आईएस के लड़ाके भी छुपे हुए हैं, कुछ भाग गए हैं। चूंकि ये एक रिहायशी इलाका है इसलिए इराकी सेना यहाँ हवाई हमले नहीं कर सकती, इसलिए ऑपरेशन काफी धीमा चल रहा है। बीबीसी संवाददाता आयमान ओघाना बताते हैं, उम्मीद थी कि मोसुल को छुड़ाने के लिए सैन्य अभियान शुरू होगा तो मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लाखों लोग अपना घर, अपने शहर को छोड़कर भागने लगेंगे। लेकिन मोसुल में कई लोग अपना घर छोड़कर जाने से मना कर रहे हैं। हालांकि इसे इराकी सेना का काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि घनी आबादी वाले इस शहर की गलियों, घरों पर न तो बम गिराए जा सकते हैं, न ही अंधाधुंध फायरिंग की जा सकती है। लेकिन लड़ाई से तबाह हो रहे शहर में लोगों के लिए साफ पानी, खाना, बिजली जैसी व्यवस्था करना इराकी सरकार के लिए अगली चुनौती है। मोसुल में रहने वाले एक शख्स ने बताया, उन्होंने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। इस घर को खरीदने के लिए मैंने पूरी जिंदगी काम किया है। सेना का अभियान शुरू होने से पहले यहाँ बिजली और पानी मिल रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं है।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। इराक की सेना जो है मोसुल के शहर में घुस गई है और उन्होंने इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को घेर लिया है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत बीबीसी रेडियो पर, निखिल रंजन के साथ। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पिछले कई दिनों से तनाव जारी है, जहां दोनों ओर से गोलीबारी की खबरें लगभग हर दिन आ रही हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान की फौज ने उसके एक सैनिक के शव के साथ बर्बरता की है, जिसका भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही है। इन सब घटनाक्रम के बीच में पाकिस्तान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भारत के अमृतसर शहर में दिसंबर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करेंगे। एक तरफ सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी है और दूसरी ओर सरताज अजीज का भारत आने का कार्यक्रम। क्या ये दो विरोधाभास हैं? भारत पाकिस्तान के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अफसर करीम से यही सवाल पूछा।
पहली बात तो यह है कि इंडिया का जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो टेररिज्म रोकने के लिए है। वो पाकिस्तान को अर्ज करता रहा है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली और दूसरे तरीकों से कि आप टेररिज्म को किसी तरह रोक दीजिए, फिर हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान का कहना है कि हम टेररिज्म कर ही नहीं रहे, पठानकोट पे अटैक हुआ या किसी और जगह पे अटैक हुआ, उसको जो इंक्वायरी की तो उनका नतीजा है कि हमारी तरफ से कोई नहीं गया। तो कोई मीटिंग पॉइंट इस पे नहीं मिला है, और इसकी वजह से जब उरी पे अटैक आया तो एक किस्म की हद हो गई और डिमांड हुआ इंडिया में चारों तरफ से कि आप पाकिस्तान से बदला ले। बदला तो नहीं लिया हिंदुस्तान ने, लेकिन जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं उनके ऊपर अटैक किया जो टेररिस्ट थे, और पाकिस्तान आर्मी को बतला दिया कि आपके ऊपर अटैक नहीं है। लेकिन उसके बाद से एक ऐसी सिचुएशन बन गई, खासकर उस बॉर्डर पे जो कि हम मानते हैं कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान उसको वर्किंग बॉर्डर मानता है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर है। उसमें बीएसएफ का और उनके मुकाबला होना शुरू हो गया एक दूसरे के खिलाफ, और बढ़ते बढ़ते फिर और बात बढ़ गई। ये कोई पॉलिसी नहीं है, न ये मिलिट्री एक्शन है, न ये वॉर लाइक सिचुएशन है, न इसमें दोस्ती का कोई हाथ बढ़ाया जा सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग करते जाएं, इसमें सिविलियन ज्यादा मर रहे हैं। तो इसको दोनों तरफ से रोकने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल अभी रुका हुआ है इसलिए अभी कुछ आगे नहीं बढ़ रही बात। अब जहां तक हार्ट और एशिया के कॉन्फ्रेंस है उसका इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। भारत का अभी तक ये डिप्लोमेटिक एक्शन रहा है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करे, उसको आइसोलेट करे। आइसोलेट करने में आसान नहीं है, लेकिन सार्क के इलाके में उसको अलग किया जाने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए वो उसकी मर्जी है, वो किस तरीके से क्या कहेगा वो आगे बात है, लेकिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो आएंगे नहीं, और भारत ये चाहता ही था शायद कि वो ना आए ताकि वो अलग थलग पड़ जाए। लेकिन अब ये आने का उन्होंने माहौल इसीलिए बनाया है कि वो अलग थलग नहीं पड़ना चाहते। तो इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक बनेगा कि नहीं, बातचीत कोई होगी कि आप आफ्टर ऑल ये जो फायरिंग चल रही है बेकार है, इसमें किसी का फायदा नहीं, दोनों का नुकसान है।
जी ये बताएं कि मौजूदा हालात में जिस तरह की तस्वीर दिख रही है भारत पाकिस्तान के दरमियान सीमा पर और कूटनीतिक संबंधों में, मौजूदा हालात के हिसाब से बात करें तो आपको क्या लगता है संबंध किस दिशा में अब जा सकते हैं, और सीमा पर आने वाले दिनों में क्या कुछ शांति हो सकती है या इस तरह के टकराव अभी और बढ़ सकते हैं?
देखिए ओवरऑल पोजीशन अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की है, जो उनकी लीडरशिप है मिलिट्री की और सिविल की, जो हमारी सिविल की लीडरशिप है, उसमें कोई समझौता होने की उम्मीद हमको नहीं दिखाई पड़ती। सिर्फ ये दिखाई जरूर हो सकता है कि आप अगर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करना बंद करते हैं बॉर्डर पर, जब कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई हिस्सा नहीं हो रहा, तो वो जब भी हो सकता है जब पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक रोके। वो पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक रोकने का इरादा नहीं है, क्योंकि वो भारत को ब्लीड करना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, और कश्मीर प्रॉब्लम को उजागर करना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो मेरे ख्याल में तो अभी कोई सामने ऐसा रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में बेहतर ताल्लुकात हो जाएंगे। अगर इससे बुरे ताल्लुकात ना हो तो हम उसको अच्छा ही समझते हैं।
भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात कर रहे थे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अफसर करीम। और आइए अब देखें कि भारत के भीतर क्या हो रहा है। ये तो सीमा की बात थी। भारत में इस वक्त जो है नोटबंदी को लेकर के ही चर्चा का बाजार गर्म है। 1000 और 500 के पुराने नोट बंद होने और नए नोट जारी होने के बीच आम लोगों की परेशानी भी कम नहीं हो रही है। भारत सरकार चाहती है कि लोग नकद लेन देन कम करें और भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। लेकिन ये सवाल है कि क्या भारत कैशलेस इकोनॉमी के लिए तैयार है? ये शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों से बात करके यही जानने की कोशिश की।
मेरा नाम मुश्ताक अंजुम है, मैं जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ। जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कैशलेस इकानमी हो सके। हाँ, जो बड़ी मेट्रो सिटीज हैं जैसे जम्मू है या श्रीनगर है, वहाँ पे किसी हद तक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कश्मीर में जो हालात ऐसे रहते हैं, वहाँ पे हर दूसरे दिन इंटरनेट ब्लॉक होता है, मोबाइल सेवाएं ठप हो जाती हैं। जब इंटरनेट ब्लॉक हो गया, मोबाइल सेवाएं ठप हो गई, तो उसके बाद आप कैसे कैशलेस इकानमी चला सकते हैं? चाहे पेटीएम हो या ऑनलाइन बैंकिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एटीएम वगैरह भी बंद हो जाते हैं, उससे भी काम नहीं चलता है।
मैं चित्तरंजन पटनायक हूँ, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में रहता हूँ। नगद लेन देन के बिना काम नहीं चल पाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो किसान हैं, ज्यादा लेबरर क्लास के हैं और ट्राइबल्स हैं। बैंक खाते पे उनको भरोसा है नहीं, जो डेली कमाते हैं वो उनको नगद ही चाहिए। डेली जो भी काम करते हैं उनको नगद चाहिए, उसी से उनकी खरीदारी होती है, घर में वो खान पान होता है।
भोपाल से हूँ मनोज कुमार। सब्जी खरीदते हैं, सुबह ठेले वाला आता है आपकी गली में, वो 5 रुपए 10 रुपए की सब्जी देता है, वो 10 रुपए की सब्जी वो किससे लेगा? वो आप नगद चाहेगा, वो ना आपके लिए देना संभव है ना उसके लिए लेना संभव है। वैसे दूध वाला आपके पास आता है, काम भाई आपके यहाँ जो काम करती है और जो लेन देन करते हैं, दूध का पैकेट लेने गए, 22 रुपए का दूध का पैकेट आया, अब आप कैसे देंगे इसको, नगद इसके लिए नगद की जरूरत हो। बहुत सारी चीजें जैसे मैं ऑटो रिक्शा में बैठ कर गया, मुझे यहाँ से न्यू मार्केट जाना है, वो उससे 20-22 रुपए बने, अब 20-22 रुपए का वो कहाँ से वो कैशलेस होगा, किस तरह की चीजें होंगी, वो पेटीएम वगैरह जो दुनिया भर की बातें की जा रही है वो हर ऑटो वाले के पास संभव नहीं है।
ये थी कुछ आम लोगों की बातें। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है और संसद में कामकाज बंद है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में इंदौर के कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सोशल मीडिया के जरिए नोटों के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है और इससे बचने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से इस बारे में किसी भी तरह के आपत्तिजनक संदेश न भेजने की चेतावनी दी गई है। संदीप सोनी ने इंदौर के जिलाधिकारी पी नरहरि से पूछा कि ये आदेश देने के पीछे क्या मकसद है।
कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बिना पढ़े ही जो है उस पर जजमेंट पास कर रहे हैं, तो उसको ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है बेसिकली दिस इज अगेंस्ट एनी र्यूमर्स। जैसे 10 रुपए का सिक्का बंद हो गया, 100 रुपए का नोट बंद हो गया, इस तरह के जो र्यूमर्स फैलाते हैं जो अनवेरीफाइड है और टोटली बेसलेस है, ऐसे र्यूमर्स पे प्रतिबंध लगाया है। हम हंसी मजाक की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सीरियस बातें कर रहे हैं।
आपको लगता है कि ये वाकई इतना गंभीर मुद्दा था कि जिसको लेकर इस तरह का आदेश जारी करना पड़ा?
हाँ, डेफिनेटली है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ पे ऑलरेडी इंदौर में ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं इससे पूर्व, जिस समय अनावश्यक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस निर्मित हुए हैं। लास्ट ईयर एक रीगल स्क्वायर पे ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ लोग इकट्ठा हुए थे, अनावश्यक एक र्यूमर फैला था कि सबको इकट्ठा होना है और हजारों लोग इकट्ठा हुए और बिना बात के इकट्ठा होके फिर जाते समय जो है तोड़फोड़ किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे इस तरह के जो भी अफवाहें हैं विषय जो सत्य नहीं है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थितियां पब्लिक डिसऑर्डर और पब्लिक न्यूसेंस निर्मित होता है और ऐसे ऑर्डर्स जो है हाई कोर्ट्स में सभी जगह चैलेंज भी हो चुके हैं और अपहेल्ड भी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है हमारे तरफ से जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो आवश्यक है, हम डिमोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन के संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं इसमें, आप जिसको जो लिखना है करिए, जो पढ़ना है करिए, आप जो जोक्स चलाना है करिए, परंतु जो अनवेरीफाइड फैक्ट्स हैं उसको आप नहीं प्रसारित कर सकते हैं। आज के जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है ऑलरेडी भारी संख्या में लोग जो है रोड पे खड़े हैं, एटीएम्स में खड़े हैं और बैंक्स में खड़े हैं और आप एक अफवाह फैलता है और सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। वो जो अफवाह फैला रहा है, जो अनवेरीफाइड फैक्ट्स प्रसारित कर रहा है, वो डेफिनेटली दोषी है। बस उतना ही हमारा उस आदेश का तात्पर्य है, उससे ना तो कम है ना ज्यादा है।
क्या इस मामले में कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पकड़ में आया कुछ?
कोई इशू, एक इशू आया था 10 रुपए सिक्के वाला, उसको हमने आईटी सेल पुलिस को रेफर किया है, वो कहां से ये 10 रुपए सिक्के का प्रतिबंध लगा है करके किसने जारी किया है वो वेरीफाई कर रहे हैं उसको।
इंदौर के जिलाधिकारी पी नरहरि। और आइए आगे बढ़ने से पहले जरा नजर डालते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। हरिता अखबारों के साथ स्टूडियो आ चुकी हैं।
जी, नोटबंदी की खबरें सारे ही अखबारों में छाई जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले बात भारत और पाकिस्तान की कल जो घटना घटी उसकी चर्चा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन है, मुख्य खबर के तौर पर इसे प्रकाशित किया गया है। भारतीय सैनिक के शव की सात बर्बरता के बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की 15 सैनिक पोस्ट पर बमबारी की है। इसी पर जनसत्ता लिखता है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब, सीमा पर 7 की मौत। उसके अलावा एक और खबर जिसकी चर्चा सभी अखबारों में है, सुप्रीम कोर्ट ने कल लोकपाल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अगर भ्रष्टाचार की सफाई की सरकार बात करती है तो पिछले 2 साल में क्यों कोई लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया है, इस पर जवाब मांगा गया है। अब बात करते हैं नोटबंदी की, जिसकी आजकल हर रोज ही हम चर्चा करते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि आज नोटबंदी के 15 दिन पूरे हो रहे हैं और आज ही आधी रात से कहीं नहीं चलेंगे पुराने बड़े नोट, सिर्फ बैंक में ही जमा और एक्सचेंज हो पाएंगे। हो सकता है कि कुछ ज़रूरी जगहों पर पुराने नोट चलाने की छूट को सरकार आगे बढ़ा सकती है। 24 नवंबर आखिरी दिन था कि अखबार सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल किए जा रहे थे नोट। इसके अलावा शीतकालीन सत्र संसद का ठप चल रहा है नोटबंदी पर, इसी पर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, एक कार्टून छापा है कि वेंकैया नायडू जो मंत्री हैं केंद्रीय, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कैशलेस इकोनॉमी में संसद सत्र ठप होने का खर्च कम आएगा।
जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी समीक्षा के लिए। और आइए अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर जंगल के इलाकों में रहने वाली गीता यानी मड़कम मुक्के की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुकमा जिले के कोंटा प्रखंड के गांव में रहने वाली हैं, जहां न सड़क है न बिजली और न ही कोई और बुनियादी सुविधा। माओवादी रहीं गीता का कहना है कि इसी वजह से वो माओवादी छापावारों के बाल संघम के साथ बचपन में ही जुड़ गई थी। हाल ही में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अब उन्हें सुकमा जिला पुलिस बल में नौकरी मिल गई है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने उनसे मुलाकात की है, सुनिए खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में कहीं किसी सुदूर गांव में माओवादियों का ये सांस्कृतिक दस्ता क्रांतिकारी गीत गा रहा है। कभी इसी तरह के दस्ते में मड़कम मुक्के यानी गीता भी गीत गाकर और नृत्य के माध्यम से माओवादियों की विचारधारा का पैगाम आदिवासियों तक पहुंचाने का काम करती थी। अठारह साल की गीता से मेरी मुलाकात सुकमा के दोड़नापाल के इलाके में हुई। वो यहाँ एक पुलिस कैंप में रहती हैं। तो आखिर वो माओवादियों के सांस्कृतिक दस्ते में शामिल कैसे हुई?
सदेश मान जी नाटेन बालाल संगम तुर्कवेसोमा।
मेरा गांव घने जंगलों के बीचों बीच है, जहाँ मैं पली और बड़ी हुई। बचपन में मैं माओवादियों के संगठन के बाल संगम से जुड़ गई थी। काफी सालों तक मैं इसके साथ जुड़ी रही।
मड़कम मुक्के कहती हैं कि माओवादियों का सांस्कृतिक दस्ता सुदूर जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए एकमात्र मनोरंजन का साधन रहा है।
मुझे उनका सांस्कृतिक दस्ता बहुत आकर्षित करता था। सबके साथ मिलकर मुझे क्रांतिकारी गीत गाने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने खुद ही जाकर माओवादी नेताओं से बात की और उनके सांस्कृतिक दस्ते से जुड़ने की इच्छा जताई। लोगों के बीच क्रांतिकारी गीत गाना और नाचना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
मगर इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मड़कम मुक्के को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या था वो?
एक मत के ईश्वर मुलील के दिनाले घटना न दिनाले परसोई के दिना दिनाले गस्तदान।
बाहर की दुनिया मैंने कभी देखी नहीं थी। चूंकि माओवादियों के साथ जुड़ी रही, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हमेशा आंख में चौली खेलती रहनी पड़ती थी। हमेशा सुरक्षा बलों से मुठभेड़ का डर बना रहता था। बड़ी खराब जिंदगी थी। सुबह कहीं होती थी, शाम कहीं। हमेशा खौफ का साया मंडराता रहता था।
एक दिन गीता ने अपनी पिछली जिंदगी से नाता तोड़ने का मन बना लिया। वो आत्मसमर्पण करना चाहती थी।
जंगल के बाहर आकर अब मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों से मिल रही हूँ। ये मेरी दूसरी जिंदगी है, अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी।
ये कहानी थी सुकमा जिले के एक सुदूर गांव की रहने वाली मड़कम मुक्के की। इन जंगलों में रहने वाली कई आदिवासी युवतियां ऐसी हैं जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। परिस्थितियों से तंग आकर कहीं किसी ने माओवादियों के लिए हथियार उठाया तो कहीं किसी ने सरकार के लिए। सलमान रावी, बीबीसी, दोड़नापाल, बस्तर।
भारत में बहुत सी औरतें पर्दा प्रथा का पालन करती हैं। इस साल हरियाणा के गांव की हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने अपने समाज से कुछ सामाजिक बुराइयों को हटाने की कोशिश करने का प्रण किया। शुरुआत हरियाणा के मिर्जापुर गांव की अंजू यादव और मंजू यादव ने की। अंजू यादव ने बीबीसी संवाददाता सुमिरनप्रीत कौर से खास बातचीत की। ये बातचीत हिस्सा है 100 वुमेन सीरीज का। महिलाओं की ऐसी ही विशेष कहानियों को दुनिया के सामने लाने के लिए बीबीसी 100 वुमेन सीरीज लेकर आया है। सुनिए अंजू यादव से सुमिरन की बातचीत।
भारत में बहुत सी महिलाएं घूंघट प्रथा का पालन करती हैं, लेकिन हरियाणा मिर्जापुर की दो बहनों ने घूंघट को कहा बाय बाय। मेरे साथ इस वक्त दोनों बहनें तो नहीं है, एक बहन है अंजू यादव जो मिर्जापुर से आई है हमारे स्टूडियोज में। अंजू, कुछ अपने बारे में बताइए।
मैंने आज से 5-6 महीने पहले इस घूंघट प्रथा के खिलाफ एक छोटी सी आवाज उठाई थी कि मुझे नहीं करना। मैंने ये ट्रेडिशन मेरी शादी के बाद 10 इयर्स तक फॉलो किया है। मैं ट्रिपल एम में हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ और इसके साथ मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है घूंघट के साथ।
घूंघट से आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या आती है?
सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि हाँ हम चले कैसे, आपको बिल्कुल आप आदमियों को बोलो कि आंखों पे पट्टी बांध के पूरा दिन रहना है तो शायद वो तो एक घंटे के लिए भी इस चीज को बोरो नहीं कर सकते, बट हमें हाँ कभी भी बोल दिया जाता है ये आ रहा है वो आ रहा है चलो घूंघट करो। तो अगर चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा है लेकिन उसको आप किसी के सामने सही से अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकते क्योंकि आपको घूंघट में रहना है और कम बोलना है।
तो कब लगा कि भाई बस बहुत हुआ?
ये इसी साल अप्रैल की बात है, हमारे यहाँ पे जो डिप्यूटी कमिश्नर है उनका आना हुआ तो उन्होंने गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनको बोला कि आप घूंघट नहीं करेंगे, घूंघट करके काम कैसे करेंगे, तो हमें भी लगा यार इनको बोल रहे हैं, तब हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें नहीं करना घूंघट और आप इनको बोलिए समाज के जो बड़े बूढ़े हैं शायद आपकी बात मान लें, और उन्होंने बोला, उन लोगों ने मानी भी उनकी बात और देन आई रिमूव माय घूंघट।
तो आपकी फैमिली की पहले तो क्या प्रतिक्रिया रही?
फैमिली का सपोर्ट तो हमारे साथ था, हमने फैमिली से शुरू में बात की थी, उन्होंने बोला ठीक है नहीं करना, बट ये था कि एक गांव में रहने का मतलब वो इसको रिस्पेक्ट के साथ जोड़ देते हैं कि जो घूंघट करेगा वो रिस्पेक्ट करता है और जो घूंघट नहीं करता वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो कहते हैं आज के समाज में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे ज़्यादा मर्दों ने भी बहुतों ने मतलब इसके खिलाफ हमें अगेंस्ट में बोला, बट सबसे ज़्यादा जो अगेंस्ट में बोला वो लेडीज़ ही थी। उन्होंने मेरी मतलब मदर इन लॉ को काफ़ी हरास किया इकट्ठे करके 10-20-50 लेडीज़ ने कि आपने क्या कराया है, ये आपने और उनका साथ दिया, ये अच्छा नहीं किया, इसमें कहाँ के संस्कार हैं। तो मतलब एक घूंघट से आप संस्कारों की बात तक ले गए, तो मतलब घूंघट करने वाले संस्कारी होते हैं, नहीं करने वाले नहीं होते, और शायद मुझे लगता है कि भारत में ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं कि वो घूंघट नहीं करती तो क्या वो संस्कारी नहीं है? कम पढ़ी लिखी हैं वो घूंघट भी करती हैं और साथ साथ वो इतनी ज़्यादा लड़ाई और इतने उल्टे जवाब देती हैं तो वो संस्कारी हैं। उल्टे जवाब दो कुछ भी करो बट घूंघट कर लो तो तुम संस्कारी हो, और अगर घूंघट नहीं करके हम किसी के सामने जवाब भी नहीं दे रहे तो हम संस्कारी नहीं हैं।
तो अंजू किस तरह से आपने दूसरी औरतों को भी प्रेरित करना शुरू किया कि हाँ अगर आप चाहो तो घूंघट के बिना भी अपना जीवन जी सकती हो?
मैंने और मेरी सिस्टर ने गांवों में जाके महिलाएं ग्राम सभाएं करके उन्हें बताया कि ठीक है आपकी आप बेटी को सोचते हो, आपकी बेटी को तो आप अच्छा मॉडर्न ससुराल चाहते हो लेकिन बहू को ही क्यों, जब बहू को बेटी बना के लाए हो तो उसे बेटी की तरह रखो। जो हमारा बेस्ट बेनिफिट रहा उसमें ये रहा कि हमारे साथ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी हमारा साथ दिया और हमें सपोर्ट किया।
तो इस साल ऑफकोर्स अंजू मंजू यादव ने, उनके परिवार वालों ने, साथ ही महिला सरपंचों ने मिर्जापुर की ये शपथ ली, सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, कि हाँ वो ज्यादा से ज्यादा औरतों को प्रेरित करेंगी कि वो घूंघट को कहे ना। व्यक्तिगत तौर पे आपने क्या बदलाव अपने में महसूस किए?
मेरा कॉन्फिडेंस और अपनी बात दूसरों के सामने रखना कि हाँ हम भी बोल सकते हैं कि हाँ हमें क्या चीज सही लगती है और क्या चीज गलत लगती है, फैमिली वाले भी कि हाँ तुम भी अपनी राय दो किसी भी काम में क्या सही है या क्या गलत है।
अच्छा ये बताइए कि जब मैं आप सब लोगों से बात कर रही थी जब आपने ये मुहिम शुरू की तो बहुतों ने मुझे ये कहा कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो शहरों में तो काम करना ही है पर जो शुरुआत है वो गांव से होगी।
हिंदुस्तान बदलना है, भारत बदलना है तो वो बदलाव मेरे हिसाब से गांवों से ही आएगा क्योंकि शहर तो डेवलप है, वहाँ पे डेवलपमेंट की या कुछ भी बदलाव की जरूरत नहीं है। तब तक ये बदलाव की लहर गांवों से शुरुआत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता।
तो ये थी मिर्जापुर हरियाणा की अंजू यादव
और उनसे बात कर रही थी सुमिरनप्रीत कौर। अंजू यादव का कहना है कि बदलाव गांवों से ही आएगा और घूंघट उठाकर उन्होंने इसकी शुरुआत की है। नमस्कार भारत में अब आपसे विदा लेने का वक्त करीब आ गया है तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। इराक के अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने मोसूल के पश्चिम में एक अहम सड़क को नियंत्रण में लेकर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को घेरने का दावा किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमरीका का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेजी कैद एसेबजी ने पुष्टि की है कि लीबिया और ट्यूनीशिया की सीमा पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अमरीकी ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। चरमपंथी संगठन अलकायदा ने अपने एक वरिष्ठ नेता फारूक अल कहतनी की मौत की पुष्टि कर दी है। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के मद्देनजर जापान और दक्षिण कोरिया में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की कमान 23 साल की एक महिला वकील को देने पर हंगामा खड़ा हो गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला है दीपक जसरोटिया ने। आपसे एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। हरिता कांडपाल के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।